یہ پروگرام امریکی عوام کی مدد اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تمام مواد کی ذمہ داری پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں شامل مواد یو ایس ایڈ یا امریکی عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہو۔
سب سننے والوں کو میرا یعنی نورا پی ببلی اور چاچو کا پیار بھرا سلام
اور بہت سا پیار۔
سوری دوستو، میں آج کافی اداس ہوں، اس لیے زیادہ نہیں بولوں گا۔
ہیں، آپ اداس ہیں چاچو، مگر کیوں؟
یہ ہمارے چاچو پہ اداسی نے کیوں ڈیرے ڈال دیے ہیں؟
یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے بچوں سے بہت پیار ہے، اور اسی لیے میں بچوں کے اس پروگرام کو ہوسٹ کرتا ہوں۔
جی چاچو، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟
کل شام ایک دوست کے پاس بیٹھا میں نے بی بی سی کی ایک رپورٹ سنی، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں 5 سے 9 سال کی عمر کے 67 لاکھ بچے اسکول نہیں جا پاتے۔ بس جب سے یہ بات سنی ہے میں اداس ہوں، آخر کو انہی بچوں سے ہمارا مستقبل ہے، اور اگر اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکول نہیں جائیں گے تو ہم کیسے ترقی کر پائیں گے؟
جی ہاں چاچو، اور یہ اعداد و شمار پاکستان کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کی ہیں جو 2013-2014 کے لیے شائع کی گئی ہیں۔
نورا پی، یہ تو بڑی فکس کی بات ہے، اس طرح تو ہم ایک پڑھے لکھے مستقبل کی طرف نہیں جا سکتے۔
لیکن ہم نے تو پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو ہم نے اپنے بچوں کو اسکول ضرور بھیجنا ہے،
اور اسی میں ہماری بقا اور ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ چاچو نے آج جو موضوع چھیڑا ہے، میرے خیال میں ہمیں اس پر تفصیل سے بات کر لینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں آج کے پروگرام کی تفصیل بتا دوں۔
جی، یہ اچھا رہے گا۔
تو آج ہمارے پروگرام میں خزانہ، بولتی کتاب اور نظم کے علاوہ سبھی مستقل سلسلے شامل رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم بہت سی باتیں بھی کریں گے۔
جی تو نورا پی، ہم پاکستانی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے،
اور ان سکول نہ جانے والے بچوں میں 39% لڑکیاں اور 46% لڑکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 93% بچے سکول جاتے ہیں، لیکن بلوچستان میں سکول جانے والے بچوں کا تناسب صرف 65% ہے۔
دیکھیں، ابھی جو اعداد و شمار چاچو نے بتائے ہیں، یہ تو سرکاری رپورٹ سے لیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم کچھ غیر سرکاری تجزیے اور رپورٹس کا مطالعہ کریں تو حالات اور بھی تشویشناک نظر آئیں گے۔
ایسے ہی گھوسٹ سکولوں اور ٹیچرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جو حکومت سے تنخواہ تو برابر لیے جا رہے ہیں لیکن وہ کبھی بھی سکول نہیں جاتے۔ آئے روز اس طرح کی خبریں اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں کہ فلاں علاقے میں سکول کی عمارت میں بھینسوں کا باڑا قائم ہے۔
ابھی کچھ سال پہلے ایجوکیشن ایمرجنسی کے عنوان سے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ 6 سے 16 سال کی عمر کے سکول جانے والے بچوں میں سے صرف 35% ایسے ہیں جو کتاب پڑھ سکتے ہیں، جبکہ 50% بچے ایسے ہیں جو ایک فقرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس رپورٹ سے ہمارے نظام تعلیم کا معیار بھی سامنے آ جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔
اوف، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔
ابھی حال ہی میں پاکستان میں بچوں کی تعلیم پر کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم الف اعلان نے کہا ہے کہ پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے۔
بس کریں نورا پی، میں تو یہ باتیں سن کر سوچ رہی ہوں کہ ہمارے ملک کے مستقبل کا کیا بنے گا۔
دیکھیں ببلی، اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، حکومت اکیلے ملک میں تعلیم کی شرح نہیں بڑھا سکتی، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے بچے سکول جا رہے ہیں تو کیا ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بچہ ہے جو سکول نہیں جاتا؟ کیا ہم اس کے والدین سے مل کر انہیں اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں؟
بہت اچھی بات کی ہے آپ نے نور، हमें सिर्फ हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए, हम दूसरों को इल्जाम देने से पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? आखिर हम पाकिस्तान में बच्चों की तालीम के फरोग के लिए क्या कर रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा।
शुक्रिया चाचू, आपने आज बहुत अच्छे मौजू पर बहुत अच्छी और संजीदा गुफ्तगु की है।
और हम समझते रहे कि चाचू सिर्फ गैर संजीदा गुफ्तगु ही कर सकते हैं।
बाज आ जाओ बबली।
अब हम सबके पसंदीदा सिलसिले यानी आज की नज्म का वक्त हो रहा है, तो आइए सुनते हैं आज की नज्म। तो कहिए कैसी लगी ये नज्म?
बहुत अच्छी, और कितना अच्छा पैगाम था इस नज्म में,
प्यार का पैगाम। और ये पैगाम वक्त की जरूरत है, जब इंसान कबीलों, नस्ली और इलाकाई नफरतों का शिकार हुआ जा रहा है।
जी हाँ चाचू, लेकिन हमने अपना प्यार, अमन और मोहब्बत का पैगाम आम करना है।
बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब दुनिया भर के लोग अमन और मोहब्बत से रहेंगे।
नूरापी, आज खजाना में हम किस हर्फ से मिल रहे हैं?
आज हमारी मुलाकात हो रही है अंग्रेजी हरूफ तहाजी के हर्फ आर से। तो आइए सुनते हैं खजाना।
लास्ट वर्ड ऑफ
वाह वाह, मुझे तो हमेशा ऐसे ही पढ़ना अच्छा लगता है।
और ऐसा तो हम सब बच्चों को भी पसंद है।
मेरा ख्याल है कि कहानी सुनकर हमें और भी अच्छा लगेगा।
ओ हाँ, कहानी अभी बाकी है साथियों।
जी तो आइए सुनते हैं आज की कहानी।
एक थी चिड़िया, उसका नाम चीनो था, और वो एक घर की मुंडेर पर अपना घोंसला डाले आराम से रहती थी। फिर यूं हुआ कि उस घर के मकीनों को न जाने क्या सूझी कि एक बिल्ली ले आए। चीनो को खैर बिल्ली से तो कोई मसला नहीं था, लेकिन लगता था कि बिल्ली को चीनो और उसके बच्चों से को खास दुश्मनी है। हालांकि बिल्ली को खाने पीने के लिए अच्छा खासा खाना मिलता था और साथ ही दूध पीने को मिलता था, लेकिन उसको तो बस एक ही धुन थी, वो किसी भी तरह चिड़िया और उसके बच्चों को अपना निवाला बनाना चाहती थी। चीनो जानती थी कि उसका घोंसला एक महफूज जगह पर है, लेकिन उसने कई बार देखा था कि बिल्ली मुंडेर के नीचे खड़ी उसके घोंसले की तरफ टिकटिकी बांधे देख रही है। एक दो बार तो उनका आमना सामना भी हुआ, लेकिन बिल्ली की मजबूरी थी कि वो घोंसले तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन उसकी कहर आलूद नजरें चीनो और उसके बच्चों के खौफ में इजाफा करने के लिए काफी थी। इन हालात में चीनो ने दिन से ज्यादा हिस्सा घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। अब वो बाहर कम निकलती थी, इस वजह से अब वो कीड़े मकौड़े भी कम ही पकड़ पाती थी, और यूं खुराक की कमी की वजह से उसके बच्चे बहुत परेशान थे। और अब तो चीनो ने देखा कि बिल्ली सीढ़ियों से होती हुई अक्सर छत पर पहुंच जाती और चीनो के घोंसले के ठीक ऊपर पहुंचकर नीचे झांकती और कोशिश करती कि उसके जालिम पंजे किसी तरह चीनो के घोंसले तक पहुंच जाए। चीनो के लिए बड़ी परेशानी की बात थी। फिर बिल्ली के छत पर आने के वाकयात बढ़ते चले गए और चीनो को सोचना पड़ा कि बिल्ली एक न एक दिन अपने मकसद में कामयाब भी हो सकती है। चीनो ने सोचा कि अच्छा है अगर अपनी साथी चिड़ियों की एक मीटिंग बुलाकर उनसे कोई बेहतर मशवरा ले सके। अगले रोज बरगद के घने पेड़ की चोटी पर सैकड़ों चिड़िया मौजूद थी। वो चीनो के बुलाने पर यहाँ आई थी। थोड़ी ही देर बाद मीटिंग शुरू हो गई। चीनो ने तफसील से अपने घर के बारे में उन्हें बताया और ये भी कि बिल्ली के कितने खतरनाक अजायम हैं। मीटिंग में सारी चिड़िया खूब ऊंची आवाज में बोले जा रही थी। सभी के बोलने की वजह से कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। जब शोर काफी बढ़ गया तो सबसे बूढ़ी चिड़िया ने सबको खामोश होने के लिए कहा। सभी चिड़िया एकदम से खामोश हो गई। अब एक मुकम्मल खामोशी थी। बूढ़ी चिड़िया ने बात यूं शुरू की, मुझे लगता है चीनो के घर में रहने वाली बिल्ली अपने हुदूद से तजावुज कर रही है, लिहाजा उसको सजा देना तो बनता है। सजा, और वो भी बिल्ली को? मगर कौन देगा इस जालिम बिल्ली को सजा? सभी चिड़ियों ने एक बार फिर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। बरगद की चोटी पर घमसान की धमा चौकड़ी हो रही थी। कोई एक चिड़िया एक टहनी से उठती तो कोई दूसरी टहनी पर तशरीफ ले जाती। बूढ़ी चिड़िया ने एक बार फिर सबको डांट कर चुप करवाया और कहा, शोर करने और ऊंचा बोलने से हम बिल्ली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमें इसके लिए मंसूबा बंदी करना होगी कि हम कैसे बिल्ली को सजा दे सकें। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? एक साथ बहुत सी चिड़ियों ने सवाल किया। ऐसा मुमकिन है और ऐसा इत्तेफाक की बरकत से मुमकिन है, बूढ़ी चिड़िया ने एतमाद से जवाब दिया। फिर काफी देर की बातचीत के बाद तय हुआ कि कल दिन सभी चिड़िया चीनो के घर के पास के दरख्तों में छुप कर बैठी रहेंगी। और जैसे ही बिल्ली छत पर आएगी और चीनों को तंग करने की कोशिश करेगी, सभी चिड़ियां मिलकर बिल्ली पर हमला कर देंगी और अपनी नन्ही नन्ही सैकड़ों चोंचों से उसका मिजाज ठिकाने लगाएंगी। बहुत सी चिड़ियों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से बिल्ली को भगा सकेंगी, लेकिन चूंकि ये सभी चिड़ियों का फैसला था इसलिए सभी को मंजूर था। जैसे ही दूसरे दिन का सूरज चमका, सभी चिड़ियां मुख्तलिफ जगहों से उड़ उड़कर चीनों के घर के पास वाले दरख्तों में जमा होना शुरू हो गईं। बूढ़ी चिड़िया ने उन्हें बता दिया था कि जब तक वो न कहे कोई भी हमला नहीं करेगा। बूढ़ी चिड़िया एक पेड़ की चोटी पर बैठी थी, उसकी नजरें ठीक चीनों के घोंसले पर थी और फिर उसने देखा कि बिल्ली सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। फिर सबने देखा कि बिल्ली मुंडेर के ऊपर से नीचे लटक कर चीनों को घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बस इतना देखना था कि बूढ़ी चिड़िया ने सभी चिड़ियों को हमले का हुक्म दे दिया। एकदम से सैकड़ों चिड़ियों ने बिल्ली पर हल्ला बोल दिया। बिल्ली जो पहले ही मुंडेर से नीचे लटक रही थी कुछ भी समझ नहीं पाई। अचानक ही उसके जिस्म पर चिड़ियों की चोंचों से पड़ने वाले जख्मों ने उसे हिला कर रख दिया। वो इस हाल में थी कि ना तो अपना बचाव कर सकती थी क्योंकि वो मुंडेर से लटक रही थी, और ना ही वो इस हाल में चिड़ियों पर कोई जवाबी हमला कर सकती थी। थोड़ी देर तक तो वो चिड़ियों के हमले बर्दाश्त करती रही, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा जिस्म जख्मी हो चुका है। अब वो मुंडेर पर अपनी पकड़ बरकरार नहीं रख सकती थी। देखते ही देखते जालिम बिल्ली मुंडेर से नीचे गिरी और नीचे जाकर सहन के पुख्ता फर्श से टकराई। उसके होश ठिकाने आ चुके थे। उसने जैसे तैसे खुद को उठाया और एक तरफ को भाग निकली, कभी भी वापस ना आने के लिए। वो घर छोड़कर जा रही थी। वो तो बस इतना ही सोच रही थी कि इन चिड़ियों के तेज चोंचों की जद से एक बार बच जाए, फिर वो कभी भी किसी चिड़िया को तंग नहीं करेगी। चिड़ियों ने बिल्ली को दूर तक भगाया और फिर चीनों के घर की छत पर जमा हो गई। अक्सर चिड़ियों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक जालिम बिल्ली को मार भगाया था। बूढ़ी बिल्ली ने सभी चिड़ियों को मुबारकबाद दी और कहा, अगर तुम इत्तेफाक से काम लोगी तो हाथी का मुकाबला भी कर लोगी, लेकिन अकेले अकेले तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारी ताकत इत्तेफाक और इत्तेहाद ही में है। चीनों ने सबका शुक्रिया अदा किया। वो सोच रही थी, सच ही तो कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है।
वाओ, कितनी अच्छी कहानी थी। चिड़ियों ने एक साथ मिलकर बिल्ली को खूब सबक सिखाया।
यही होती है इत्तेफाक की ताकत,
और जब सब मिल जाए तो फिर कोई कमजोर नहीं पड़ सकता। बूढ़ी चिड़िया को इस बात का एहसास था।
तो क्यों ना अब हम बोलती किताब की तरफ चले।
जी बबली, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तो आइए मिलते हैं बोलती किताब से।
मैं हूँ बोलती किताब, मैं हूँ बोलती किताब, मिलती को हर नयाब, मिलती को हर नयाब, बांटू इल्म के खजाने, बांटू इल्म के खजाने, सिखाऊं अदब अदाब, सिखाऊं अदब अदाब, करूं हर जहन को रोशन, करूं हर जहन को रोशन, हर एक चेहरे को शादाब, हर एक चेहरे को शादाब। मैं हूँ बोलती किताब, मैं हूँ बोलती किताब।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम बोलती किताब, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
मैं भी अच्छी हूँ।
आज फिर आपका टाइटल बहुत खूबसूरत है।
तारीफ के लिए शुक्रिया।
तो हो जाए तारों फिर आज के रूप का।
जी हाँ, आज मैं जिस किताब के रूप में हूँ ये एक नज़मों की किताब है जिसमें बच्चों की नज़में हैं, और ये नज़में मौलवी मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी की लिखी हुई हैं।
और इस किताब का नाम क्या है?
किताब का नाम है एक बच्चा और जुगनू, और इस किताब की तदवीन और मुरतब करने की जिम्मेदारी अफजाल अहमद ने निभाई है।
वाओ, फिर तो ये बहुत मजे की किताब होगी।
हाँ ये तो है।
आपको पता है ना, मुझे नज़्में और गीत बहुत पसंद हैं।
हाँ, कुछ कुछ अंदाजा तो है मुझे इस बात का।
और मैं कभी कभी अपनी पसंद की नज़में और गीत गुनगुनाती भी हूँ।
अच्छा, इस बात का मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सुर में ही गुनगुनाती होंगी और अच्छा गाती होंगी।
हाँ, दोस्तों का तो यही कहना है कि मैं गीत अच्छा गा लेती हूँ।
मुझे ये जानकर खुशी हुई।
अच्छा, ये बताएं कि इस किताब में कुल कितनी नज़में शामिल हैं?
इस किताब में कुल 7 नज़में शामिल हैं और ये किताब 16 सफ़हात पर मुश्तमिल है।
मुझे उम्मीद है ये खूबसूरत होगी।
जी हाँ, ये एक खूबसूरत किताब है और इसमें तमाम सफ़हात रंगीन हैं, जबकि हर सफ़े का रंग दूसरे से जुदा है।
ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, इसमें शामिल की गई नज़मों के बारे में कुछ बताएंगे आप?
हाँ, इस किताब में जो नज़में शामिल की गई हैं, उनके नाम ये हैं: एक बच्चे और जुगनू की बातें, गर्मी का मौसम, सच कहो, वाज, दानाओं की नसीहत दिल से सुनो, बरसात, कछुआ और खरगोश।
अच्छा, ये तो बताएं कि इस किताब की कीमत क्या है और क्या ये आसानी से मिल जाती है?
इस किताब की कीमत 100 रुपए है और ये आसानी से बच्चों की किताबों की दुकान से मिल जाती है।
बहुत शुक्रिया बोलती किताब, आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई।
मुझे भी अच्छा लगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज बोलती किताब।
बोलती किताब ने आज फिर एक अच्छी किताब का तारुफ करवाया।
और क्या आप भी हम बच्चों की किताबें पढ़ते हैं?
बबली, किताबें बच्चों या बड़ों की कब होती हैं? किताबें तो हम सब की होती हैं और मुझे किताबें पढ़ना पसंद है।
अच्छा लगा ये सुनकर, आप वाकई अच्छे चाचू हैं।
तारीफ का शुक्रिया।
और अब हम सुनने चलते हैं नज्म।
बर्फ की चादर ओढ़ के आई सर्दी तेरे के बाद, गर्म लिहाफों में छुप बैठे मेरे सारे यार। बर्फ की चादर ओढ़ के आई फूल खिले तो तितली तितली रंग की बारिश बरसी, फूल खिले तो तितली तितली रंग की बारिश बरसी, और भंवरों में हो हो करके खूब हुई तकरार।
बर्फ की चादर ओढ़ के आई सर्दी फिर एक बार।
अच्छा दोस्तों, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आखिर में तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आरा और तजावीज के लिए हमें जरूर लिखें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें।
और हमारा ईमेल एड्रेस है roshni@parkreading.org।
और वो तमाम साथी जो हमें पैगाम भेजना चाहते हैं, यानी मैसेज करना चाहते हैं, वो मोबाइल के मैसेज राइट ऑप्शन में जाइए, PRP टाइप कीजिए, उसके बाद अपना पैगाम लिखें और उसे भेज दें 833 पर, यानी 8333 पर। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 03458485349।
अब नूरापी, बबली और चाचू को दीजिए इजाजत।
लेट्स रीड।
یہ پروگرام امریکی عوام کی مدد اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کے تمام مواد کی ذمہ داری پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں شامل مواد USAID یا امریکی عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہو۔